हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्दः श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। एक अलग लीला स्थली है। तो जगन्नाथपुरी में दो प्रकार की लीला स्थलियां हैं। एक तो है जो भगवान जगन्नाथ से संबंधित लीला स्थलियां हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां भगवान जगन्नाथ ने अपने विशेष भक्तों के संग में कई प्रकार की लीलाओं का संपादन किया है। और दूसरा है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ से अभिन्न है। जय कृष्ण सेई गौरा सेई जगन्नाथ। जो कृष्ण है वही गौरांग महाप्रभु है और वही जगन्नाथ देव है, शास्त्र कहते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु अपना जो स्थान है नवद्वीप को छोड़कर 24 साल की आयु में संन्यास ग्रहण करते हैं। अभी अभी तो चैतन्य महाप्रभु का या निमाई का विवाह हुआ था या गौरांग का विवाह हुआ था, उसके उपरांत कुछ महीनों के बाद ही वो संन्यास ग्रहण करते हैं। और संन्यास वो कटवा में ग्रहण करके केशव भारती से वृंदावन जाने की योजना बनाते हैं कि मुझे वृंदावन जाना है, ब्रज में जाना है और जो मुकुंद है कृष्ण है उनकी शरण ग्रहण करना है। क्योंकि संन्यास का मतलब है उसका जीवन पूर्ण रूपेण कृष्ण की सेवा में तत्पर लगा होना चाहिए। हाँ, उसका जीवन मतलब मन शरीर और वाणी। हाँ, उसको BMW कहते हैं। सन्यासी के पास जो डंडा है उसको क्या कहते हैं डंडे को? BMW, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। हाँ, तो इस प्रकार से सन्यासी बहुत तीव्र गति से तेजी से भगवत सेवा करता है। तो महाप्रभु ने सोचा कि मुझे वृंदावन जाना है, लेकिन आकाशवाणी हुई कि नहीं नहीं अभी वृंदावन जाने का समय नहीं है। तो फाइनली आपने सुना होगा शांतिपुर आते हैं, फिर वहां वो अपनी माता से मिलते हैं। क्या नाम था उनका? सची माता। सची माता के गोद में गिरते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो एक नाबालक मतलब बुद्धिमान नहीं हूं, मुझे पता नहीं कि मैंने सन्यास क्यों ग्रहण किया है। कई बार होता है ना हमें, क्यों मैंने ज्वाइन किया। भक्त ब्रह्मचारी बनते हैं मंदिर में, बाद में सोचते क्यों फुल टाइम बना, परेशान हो जाते हैं। हाँ, तो वैसे महाप्रभु अपनी माता से मिले और कहा कि मुझे ये पता नहीं, भावुकता के कारण मैंने संन्यास ग्रहण किया है, लेकिन संन्यास के महत्व और उसके उद्देश्य का मुझे पता नहीं है। तो वो उनकी गोद में बैठ गए, रोने लगे अपनी माँ को पकड़ के, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी वेश में। और उन्होंने कहा कि यदि तुम कहोगे ना कि नवद्वीप में रहो, ये सन्यासी वस्त्र छोड़कर मैं अभी तैयार हो। तो सची माता ऐसी माता नहीं थी, उसने सोचा कि मेरा जो पुत्र है संन्यास ग्रहण किया है, वो यदि नवद्वीप में मेरे पास ही रहेगा तो सारे लोग उसकी निंदा करेंगे, संन्यास ले लिया ना अपने गांव में अपने घर में है, तो ये उचित नहीं है। सन्यासी को दूर होना चाहिए, भगवान पर निर्भर होते हुए उसको दूसरों के हित के लिए ट्रैवलिंग करनी चाहिए। तो फिर महाप्रभु ने कहा मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, लेकिन सची माता ने कहा कि वृंदावन नहीं, आपको कहां रहना चाहिए? जगन्नाथपुरी में। क्योंकि जगन्नाथपुरी और नवद्वीप ये एक ही घर के दो कमरे हैं। तो नवद्वीप से लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं रथ यात्रा के लिए, जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और पुरी के लोग नवद्वीप आते हैं वहां गंगा स्नान करने के लिए। सची माता ने कहा कि जब नवद्वीप से लोग वहां जाएंगे और वहां के लोग यहाँ आएंगे, तो आप यदि जगन्नाथपुरी में निवास करोगे तो मुझे पता चलेगा, आपकी न्यूज मुझे मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपनी माता की आज्ञा से कहां निवास करने लगे? जगन्नाथपुरी में। तो ये बाहरी कारण था कि माँ ने बोला कि बेटा जगन्नाथपुरी में रहो, ये तो बाहरी कारण था, लेकिन अंतरंग कारण क्या था? क्यों महाप्रभु रहना चाहते थे जगन्नाथपुरी में? क्योंकि ये जगन्नाथपुरी के कई सारे नाम है। एक नाम है शंख क्षेत्र, एक नाम है जगन्नाथपुरी धाम, एक नाम है श्री क्षेत्र, या एक नाम है नीलाचल या नीलाद्री, या एक नाम है कि क्रंदन क्षेत्र। क्या नाम है? क्रंदन क्षेत्र। यहाँ जो भी है उसको रोना पड़ता है। भगवान जगन्नाथ है वो भी, उनका ऐसा चेहरा मोरा कृष्ण का ऐसा क्यों बदल गया है? वो बेचारे रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? श्रीमती राधा रानी के लिए रो रहे हैं, या वृंदावन के भक्तों के लिए रो रहे हैं। इसलिए कृष्ण का फेस इतना अलग से हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, हाथ वगैरह अंदर चले जाते, पांव अंदर चले जाते हैं, केवल इतना ही शरीर है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ भी वृंदावन वासियों के वियोग में या विरह में, सेपरेशन में रो रहे हैं। और वही जगन्नाथ या वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो ऐसे वो किसके लिए रो रहे? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के लिए। राधा रानी के भाव को उन्होंने स्वीकारा है। हाँ, वही कृष्ण राधा रानी से दो चीजों की चोरी करते हैं, क्योंकि एक बार जब कृष्ण द्वारका में थे और नारद वहां पहुंचे, तो नारद ने देखा कि वहां क्या हुआ है कि रुक्मिणी सुबह सुबह उठी और भगवान कृष्ण के चरण कमलों को धोने के लिए जल रखा, और जल को वो जल से धो रहे थे, धोते हुए बीच बीच में चरणों को पकड़ते थे और अपने छाती में लगाते थे, और चरणों को देखती जा रही है, छाती को लगा रही है, और रुक्मिणी रोते जा रही है, कंटिन्यूसली उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। तो भगवान ऐसे बैठे थे अपने सिंहासन में, रुक्मिणी क्या हुआ, क्यों इतने रोती जा रही हो, क्या कारण क्या है? मैंने तुम्हारे साथ पहले मजाक किया था, परिहास किया था, उसके कारण तो नहीं, बीच में कुछ महीने बीते थे। तो भगवान ने कहा तुमने ना गलत पति चूज किया है। देखो मैं तो ग्वाला हूँ, मुझे कुछ क्षत्रिय वगैरह, मैं राजा वगैरह नहीं हूँ। बचपन से मैं कहाँ रहा हूँ, गांव में, पढ़ाई लिखाई भी मैंने नहीं की है। तो इस प्रकार से भगवान बोलते जा रहे कि तुम तो इतनी सुंदर कन्या हो, राजकुमारी हो, तुम्हारे लिए तो बड़े बड़े राजकुमार ही योग्य थे। तो ऐसे जब सोच भगवान बोलते जा रहे, रुक्मिणी केवल अपनी खड़ी थी रुक्मिणी उनके पास, और आंखें नीचे करके अपने अंगूठे से जमीन को कुरते हुए रोते जा रहे, और इतना भय लगा रुक्मिणी को कि कृष्ण शायद ये बोल के मुझे छोड़ ना दे, मेरा त्याग ना करे। ऐसा सोचकर रुक्मिणी मूर्छित होके गिर जाती है। तो कुछ महीनों के बाद अभी चरण देख कर ही रोने लगे। तो भगवान को लगा शायद वो चीज याद तो नहीं आई तुम्हें कि मैं आपको त्यागूंगा, या इस भावना का स्मरण तो नहीं कर रहे हैं। तो रुक्मिणी जब ये कह रहे, रो रहे थे, तो रुक्मिणी ने कहा कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों मैं रो रही हूँ। आपको तो कहा जाता है कि आप भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हो, लेकिन एक चीज आपको पता नहीं है, वो क्या है? आपके भक्त आपसे, आपकी सेवा करके जो आनंद अनुभव करते हैं, या आपके चरण कमलों से प्रेम करके जो आनंद की अनुभूति करते हैं, वो आपको पता नहीं है। हाँ, तो कृष्ण ने ऐसा प्रवचन पहली बार ही सुना था, ऐसे शब्द कभी किसी से सुने नहीं। कृष्ण ने सोचा ये क्या हुआ, मैं तो सारी चीजों को जानने वाला हूँ, मेरा एक नाम अंतर्यामी है, मैं सबके हृदय में हूँ, लेकिन फिर भी एक चीज मुझे पता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो सही में कृष्ण ने जब अपने हृदय को देखा, तो उन्होंने अनुभव किया कि एक चीज मुझे ज्ञात नहीं है, वो क्या है? मेरे भक्त मुझसे प्रेम करके जो आनंद की अनुभूति करते हैं, मेरी सेवा करके जो आनंद की अनुभूति करते हैं, वो मुझे पता नहीं। जैसे कोई माँ है, वो अपने वो बच्चे की सेवा करती है, तो बच्चे को थोड़ी पता चलेगा कि माँ को क्या आनंद मिल रहा है, या किसी और को थोड़ी पता चलेगा कि ये माँ दिन रात उस बच्चे की सेवा करती है, खुद सूखा खाएगी, या फिर पानी बरसात हो रही तो खुद भीगेगी, लेकिन बच्चों को सेफ रखेगी। तो ये करके क्या उसको मिल रहा है? एक विशेष प्रकार का आनंद, तो जो कोई और अनुभव नहीं कर सकता, उसके लिए माँ बनना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से भगवान ने सोचा, रुक्मिणी ने कहा कि आपको वास्तव में यदि ये जानना है कि आपकी सेवा करके भक्तों को क्या आनंद मिलता है, तो आपको क्या करना होगा? राधा रानी के भाव को स्वीकारना होगा, राधा रानी के हृदय की चोरी करनी पड़ेगी। तो भगवान ने राधा रानी की दो चीजें चुराई। हाँ, एक तो पहले उनका हृदय चुराया, श्री राधिकाश हृदय एक चोरम, राधिका का हृदय चुराया उन्होंने। हाँ, जैसे हम कहते ना हार्ट ट्रांसप्लांट करते है ना, तो ये पहला पहला केस था। भगवान ने सीधा राधा रानी का हाथ लिया, अपने यहाँ सेट कर दिया और देखा कि अरे कलर तो कृष्ण का है बाहर, तो मुझे पूरा राधा रानी के भाव में होना चाहिए। तो दूसरी चीज क्या चुराई उन्होंने, उनका रंग चुराया, वर्ण। तो वो चुरा के कृष्ण कैसे, कृष्ण पहले कृष्ण का नाम था काला चांद, क्या नाम था, जब ये दो चीजें चुराई तो कृष्ण का नया नाम पड़ा गोरा चांद। बोलिए क्या पड़ा,
गोरा चांद।
तो जब काला चांद गोरा चांद हो जाते हैं और गोरा चांद यहाँ निवास करने लगते, कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो सदैव कृष्ण के विरह में रोया करते हैं दिन रात, कि कहा कृष्ण, कोथाय कृष्ण, कोथाय कृष्ण, कृष्ण कहा है, मेरे प्राणनाथ कहा है। तो इस प्रकार से कृष्ण जब अपने लिए रोते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु हैं, और कृष्ण जब राधा रानी के लिए रोते हैं तो वो जगन्नाथ देव हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं भगवत भक्ति में उन्नति के लिए जो साधक हैं उनके लिए दो धाम बहुत महत्वपूर्ण है, एक है जगन्नाथपुरी और दूसरा है मायापुर। तो मायापुर क्योंकि वृंदावन जैसे को तैसा है, वो कृष्ण के जैसे, कृष्ण तो गीता में केवल ऑर्डर दे रहे हैं, मेरा भक्त बनो, मेरे शरण ग्रहण करो, अरे मुझे ही नमस्कार करो, मेरे ही पूजा करो, वो कुछ और कह नहीं रहे, वो बिल्कुल हैमरिंग की जाती है ना बोल बोल के। कोई वो व्यक्ति बहुत ऑर्डर देने वाला हो लेकिन वो प्रेम नहीं कर रहा है, प्रेम से नहीं बोल रहा है, हमें अच्छा लगेगा उसको फॉलो करना नहीं, लेकिन वही व्यक्ति जब अपने आचरण से भी सिखा रहा है और बोल भी रहा है कि बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, तो हमें फॉलो करने में आनंद आएगा। तो वही कृष्ण सोचते कि मैंने इतना ऑर्डर दिया, कोई भक्ति नहीं बना, तो वो खुद आए महाप्रभु के रूप में आए और फिर उन्होंने सिखाया भक्ति की सर्वोच्च परिसीमा। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ अपने आचरण से सिखाते हैं भगवत भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। तो जो भक्तों के लिए नवदीप, क्योंकि वृंदावन में आप कुछ कार्य करोगे अपराध हो जाएंगे तो उसको आपका परिणाम भुगतना पड़ेगा, कोई भी गलती आप करते हो, गलत कार्य गलती करते हो तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन नवदीप मायापुर क्या है, वहां आप आकर वो बहुत वृंदावन जब बहुत अधिक दयालु हो जाता है, सेम वृंदावन जब वो दयालु हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, नवद्वीप धाम कहते हैं। वही कृष्ण जिनमें माधुर्य है, वही कृष्ण जो बहुत करुणा के सागर है, हम कृष्ण का प्रणाम मंत्र बोलते तो क्या बोलते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तो हे कृष्ण करुणा सिंधो, तो कृष्ण कैसे है, करुणा के सागर है, दया के सागर है। लेकिन वही सागर जब अपनी सीमा को छोड़कर बाहर आ जाता है तो वो कौन है, चैतन्य महाप्रभु है, सबके पास जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु वो है, वो बादल के समान है, आपको पानी चाहिए नहीं चाहिए वो बादल आपके पास आता है और वर्षा करता है बारिश की। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु है, वो क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड आदि को नहीं देखते, सबको अपनी कृपा का वितरण करते हैं। तो जो नवदीप धाम है वो बहुत दयालु है, वहा भगवत भक्ति करना बहुत आसान है, वह अपराधों को नहीं गिनता। और ये जो जगन्नाथपुरी है, यहाँ आकर व्यक्ति को टाइम स्पेंड करना चाहिए, विशेष रूप से श्रवण कीर्तन हरि नाम का जप आदि करने में। क्यों, क्योंकि यहाँ निवास करने से भगवान के प्रति जो विरह की भावना है, सेपरेशन की भावना है, वो तीव्र गति से जागृत होती है हमारे हृदय में, क्योंकि ये क्रंदन क्षेत्र है या ये विरह स्थली है। इसलिए साधकों को ये दो धामों को विजिट करना फ्रीक्वेंटली बहुत आवश्यक है, जगन्नाथपुरी और दूसरा है मायापुर। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए, और जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार यहाँ जगन्नाथपुरी में इन्होंने एंट्री किया तो एक हमने रात को प्रवेश किया तो वहां एक वो है 18 नाला एक ब्रिज है, महाप्रभु के समय एक ब्रिज है अभी भी है, तो ब्रिज के 18 आर्च है, उसको 18 नाला ब्रिज कहते। वहां चैतन्य महाप्रभु आए, उनके साथ चार भक्त थे, मुकुंद थे, जगदानंद थे, गदाधर थे शायद, और नित्यानंद प्रभु थे। तो उनको कहा कि आप मैं अभी आपके साथ नहीं निकलूंगा, या तो आप लोग आगे जाओ या तो मैं आगे जाऊंगा, साथ में नहीं जाएंगे। तो वहां चैतन्य महाप्रभु आए सिटी से बाहर ही, जगन्नाथपुरी के बाहर, और वहां उन्होंने क्या किया, दूर से उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को देखा, जो उनको वो पताका दिख रहे थे, उसको कहते जय पताका कहते हैं, या फिर फ्लैग जब देखा तो, और नील चक्र देखा तो उसके ऊपर जगह चैतन्य महाप्रभु को गोपाल, बाल गोपाल दिखाई देने लगे, और उनको देखकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए और उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं, कैसे, दौड़ते हुए, और दौड़ते हुए आते हैं और सीधा सिंह द्वार से प्रवेश करके पूरा अंदर जाते हैं अल्टर के पास, जहां कौन वहां बैठे हैं, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा, और उनको देखकर चैतन्य महाप्रभु छलांग लगाना चाहते हैं, किसका आलिंगन करने के लिए, जगन्नाथ का, कि जाओ और क्या करो, आलिंगन करो। तो ऐसे आलिंगन करने जाते तो वैसे मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, तो वहां के जो पुजारी थे वो डंडे उठाते हैं, ये कौन है, किसकी हिम्मत हो गई अंदर आने की सीधा, और वो उनको मारने के लिए आते हैं। तो जैसे ये सारे पंडास मारने के लिए आते चैतन्य महाप्रभु को, उसी समय वहा राजा के जो गुरु हैं, पूरे पूरे के जो प्रमुख जो व्यक्ति है, जिनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य, क्या नाम था, हाँ इनका नाम हमेशा याद रखना चाहिए, सार्वभौम भट्टाचार्य, वो वहां थे बाय चांस, उन्होंने उनको रोका, कहा अरे ये तो नव युवक सन्यासी कितना सुंदर है। चैतन्य महाप्रभु अलग अलग प्रकार से भक्त बनाते थे, एक हरि नाम से, या किसी को आलिंगन कर दिया शुद्ध भक्त, कितना इजी था, या कोई उनका सौंदर्य को देखता था तो भक्त बन जाता था। तो राजा ये जो सर्वम भट्टाचार्य ने क्या किया, वहां के पुजारियों को या गार्ड्स को कहा कि इनको उठाओ और मेरे घर में लेके आओ। तो चैतन्य महाप्रभु पहली बार जगन्नाथपुरी में आए, और पहली बार आकर कहां रहे, इसी स्थान में। अभी भी ये सब पुराने जो दिख रहे हैं ना, क्या है ये खंबे वगैरह, ये सब उस समय के हैं। अभी भी सर्वम भट्टाचार्य का बेड, उनके जो डीटीज है, शालिग्राम शिला वगैरह अंदर है। हाँ, तो ऐसी कुछ चीजें, चैतन्य महाप्रभु यहाँ ही रहे, इसके पास एक कमरा है जहाँ चैतन्य महाप्रभु भोजन किया, प्रसाद ग्रहण किया करते थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ रहे, और उनको जब लाए तो वो मूर्छित अवस्था में थे। तो सर्वम भट्टाचार्य ने रुई को लिया, कॉटन को लिया, और उनके नाक के सामने पकड़ा, तो देखा कि अभी भी क्या हो रहा है, रुई हिल रही है, गर्म श्वास निकल रही है। तो सर्वम भट्टाचार्य सोचने लगे कि ऐसी भगवान को देखकर मूर्छित हो जाना, ये महाभाव या महाप्रेम का लक्षण है। हम भगवान को देखकर कभी मूर्छित होते है क्या, परेशान होते, अरे प्रणाम करना पड़ेगा फिर से, कितनी बार हमें झुकाओगे, कितनी बार हमें नहीं स्ट्रगल होता है हमें, ऐसी हम बद्ध जीव है। यहाँ महाप्रभु प्रभुपाद ने कहा भगवान का दर्शन करना, मीन चैतन्य महाप्रभु ने जैसे जगन्नाथ का दर्शन किया और मूर्छित हो गए, वो है वास्तव में दर्शन। तो वो आए और फिर चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल मूर्छित अवस्था में थे, और फिर बाद में जब चेतना आ जाती है, हरि नाम का उच्चारण को सुनकर उनको चेतना आती है और वो उठ जाते हैं, और फिर सर्वम भट्टाचार्य कहते हैं अरे तुम तो युवक सन्यासी हो, और इतनी युवा अवस्था में सन्यास ग्रहण किया, तुम्हें माया का डर नहीं है, कभी भी पतित हो सकते हो, तो मैं क्या करूंगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए, मैं वेदांत सूत्र तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो महाप्रभु ने कहा आप मेरे पिता के समान है, आप जो कहोगे वो करने के लिए मैं तैयार हूं। अरे सर्वम भट्टाचार्य मायावादी थे, मायावादी, हाँ मायावादी का मतलब है भगवान के स्वरूप को स्वीकारते नहीं थे, जगन्नाथ के प्रसाद में कोई उनका फेत आदि नहीं था, प्रसाद वगैरह ग्रहण नहीं करते थे। तो इस प्रकार से भगवान के नाम आदि का उच्चारण नहीं करते थे, भगवान निराकार आदि हैं, या भगवान को जो विग्रह है वो माया का स्वरूप है, इस प्रकार की गवेषणाएं करते थे। तो सर्वम भट्टाचार्य के द्वारा चैतन्य महाप्रभु 7 दिन के लिए जगन्नाथ मंदिर में वेदांत सूत्र को सुनते हैं, और जब सर्वम भट्टाचार्य कहते हैं अरे इतना सुना, कुछ प्रश्न नहीं पूछा तुमने, कुछ समझ में आया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा सब कुछ समझ में आया, लेकिन जब आप जो बोल रहे थे ना उसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया, जो मूल श्लोका थे वो सारे समझ में आ गए, आप तो ऐसी व्याख्या कर रहे थे, ओरिजिनल श्लोक को ढक रहे थे, जिस प्रकार से सूर्य को बादल ढक देता है। तो महाप्रभु ने फिर उनको प्रीच किया, सारंग भट्टाचार्य जो मायावादी थे उनको कृष्ण का भक्त बना दिया। तो सारंग भट्टाचार्य बाद में कहते हैं कि मैं तो भक्त बनने से पहले कौवे के समान था। कैसे था? हम भी सारे कौवे ही थे। हा? और महाप्रभु को कहते हैं मैं तो पहले कौवा था लेकिन आपकी कृपा से और आपके भक्तों के संग में अभी गरुड़ बन गया हो। क्या बन गया हो? गरुड़। तो वैसी स्थिति है। इस्कॉन में आने से पहले भक्त सारे कौवे की तरह दिखाई देते हैं लेकिन जब वो तिलक लगाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, प्रसाद पाते हैं, हाँ, तो हंस के समान नजर आते हैं। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य का यह निवास स्थान था और सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु की बहुत अधिक सेवा करते थे। तो और वो और उनकी जो पत्नी थी शाठिर माता, एक दिन कहा कि आप क्या करो, हमारे घर भोजन करने के लिए आओ। तो चैतन्य महाप्रभु आए, कुछ ही एक दो घंटे में ही उन्होंने बहुत सारे व्यंजन बनाए। तो चैतन्य महाप्रभु को वहां बिठाया, वहां एक स्थान है और ऐसा ऐसा रूम था जो महाप्रभु के लिए बनाया था जिसमें चैतन्य महाप्रभु भोजन करते थे और उसके दो दरवाजे थे, एक दरवाजा किचन में खुलता था और एक बाहर। तो जब महाप्रभु को लाया गया तो उन्होंने देखा हजारों व्यंजन है। उन्होंने कहा आप दोनों पति पत्नी ने इतना फास्ट कैसे कुकिंग किया? सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा आपकी कृपा के कारण। तो महा उनको जब सर्व कर रहे थे, हाँ, अभी सन्यासी हैं, उनके सामने कम से कम 100 प्रकार के अलग अलग व्यंजन थे और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो उनका जो उनकी जो बेटी है शाठी, हाँ, इनकी सार्वभौम भट्टाचार्य की, उनका जो पति था उसका नाम था अमोघा। क्या नाम था? ये कैरेक्टर ध्यान से आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखिए। क्या नाम था? हाँ, तो अमोघा को एक गंदी आदत थी, हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां निकालना, हमेशा कुछ ना कुछ निंदा करना। जब तक दिन में किसी भक्त की निंदा नहीं करते थे तो उनको आनंद का अनुभूति नहीं होती थी। तो अमोघा आए और उनको पता था सार्वभौम भट्टाचार्य को, तो एक गेट में डंडा लेकर खड़े थे कि अमोघा की एंट्री अंदर नहीं होनी चाहिए। अभी अंदर पत्नी ने कहा कि ये थोड़ा गरम गरम चपातियां ले जाओ, तो वो गए अंदर लाने कुछ प्रसाद। गए तो अमोघा घुस गया दूसरे दरवाजे से, देखा अरे सन्यासी होकर इतना खाता है, इतने सारे व्यंजन जो 100 लोग खा सकते हैं। हाँ, तो फिर जब इसे बोला महाप्रभु की निंदा पूर्ण वचन, सार्वभौम भट्टाचार्य को गुस्सा आया, उन्होंने डंडा लिया और उनके पीछे भागे, चिल्लाते हुए अपने पत्नी को बोले कि तुम्हारी जो बेटी वो विधवा हो जाए, हमें ऐसा दामाद नहीं चाहिए जो वैष्णव अपराधी हो, भक्तों से द्वेष करता हो, भगवान से द्वेष आदि करता हो, ऐसे दामाद की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। वो इतने विद्वान थे, शास्त्रों की बातें करने लगे कि यदि पति यदि पतित हो जाता है तो उसको त्याग देना चाहिए, बहुत सारे श्लोक उसमें कोट करते हैं। तो फिर ऐसे अमोघा चले जाते, दौड़ते गए और इतने दुखी हुए ये पति पत्नी कि हमने महाप्रभु को कहा आपको तो हमने अपने घर भोजन के लिए बुलाया था, हाँ, लेकिन आपका क्या किया, हमने यहाँ अपमान किया है, आपकी निंदा की है, हाँ, हमने आपका अपराध किया है। तो बहुत दुखी हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया और इन दोनों ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, बिल्कुल भूखे रहे। तो रात्रि हुई, हाँ, तो उस समय इनके जो बहन हुई थे सार्वभौम भट्टाचार्य के, गोपीनाथ आचार्य, वो आते और कहते कि जो अमोघा है उसको एक बीमारी हो गई है, हैजा, मतलब वो उल्टिया करके लूज मोशन करके बिल्कुल अभी मरने वाला है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, मैं जाता हूं। महाप्रभु गए उस अमोघा के पास जो ब्राह्मण थे, गए बिल्कुल मरने वाला था, क्योंकि जब हम भगवान या भक्तन से द्वेष या अपराध करते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमें भुगतने पड़ते। शास्त्र कहते 3 घंटे, 3 दिन, 3 महीने या 3 साल, हाँ, उस क्वालिफाइड वैष्णव के अनुसार आपको तीव्र गति से उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो फिर जब महाप्रभु गए तो अमोघा लेटे हुए थे, मरने वाले थे, जाकर उनके छाती में चैतन्य महाप्रभु ने हाथ रखा हृदय पर और चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे अमोघा, तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का जो हृदय है वो कृष्ण का निवास स्थान है, तुमने अपने हृदय में ये गंदी चीज को क्यों निवास प्रदान कराया, ईर्ष्या को, किसको, ईर्ष्या, द्वेष, इनको क्यों निवास प्रदान किया, इसको हटाओ। यदि आपको अपने हृदय में कृष्ण को बिठाना है तो आपको अपने हृदय में जो ईर्ष्या है, द्वेष की भावना है, इसको दूर करना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे छाती में हाथ रखा और कहा कि अमोघा, देखो ये सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे इतने प्रिय हैं, उनके घर में यदि कुत्ता भी क्यों ना हो वो भी मुझे बहुत प्रिय है, तो तुम उनके दामाद हो, तुम तो मुझे बहुत प्रिय हो। हर कोई जो भी सार्वभौम भट्टाचार्य से जुड़ा है वो मुझे प्रिय है, यही खासियत है। भक्तों के संपर्क में जो भी है भगवान उसके ऊपर कृपा किए बिना नहीं रहते। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य के जो दामाद है अमोघा के ऊपर, वो अपनी कृपा करते हैं और उसको कहते हैं उठा गोपाल, अमोघा उठो और कृष्ण के नामों का उच्चारण करो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को यहाँ ही अपना षडभुज रूप दिखाया था, ये जो षडभुज रूप में कौन है, महाप्रभु है, राम है और कृष्ण है, तो ये षडभुज रूप अपना इसी स्थान में दिखाया था। ये जो सुरंग है तो यहाँ से भी चैतन्य महाप्रभु, या कहते कि वो जाते थे वहां जगन्नाथ टेम्पल में, निकलता है सीधा शॉर्टकट, आपको ऊपर से नहीं आना पड़ेगा, अंदर से आप जा सकते हो। तो इस प्रकार से कई लीलाएं यहाँ, जैसे हमने नीचे डिस्कस किया था श्वेत गंगा में एक महान वैष्णवी के बारे में, उनका नाम क्या था, गंगा माता गोस्वामिनी। जब ये राजा की पुत्री थी तो ये राजकुमारी सारा राज्य कारोबार बंगाल में हैंडल करने वाले थे, उन्होंने कहा कौन इस झंझट में पड़ेगा, वो कृष्ण से बहुत आसक्ति थी, तो वो सब त्याग कर सबको जिम्मेदारी देकर वृंदावन गए और वृंदावन में केश घाट में निवास करने लगी। वहां हरिदास पंडित जो गोविंद देव के पुजारी हैं उनसे दीक्षा की याचना की उन्होंने, उन्होंने कहा अरे तुम तो राजकुमारी हो तुम क्या तपस्या करोगे, उन्होंने कहा नहीं तुम थोड़ा सा और ये करो, कुछ सेवाएं वगैरह प्रदान की। फिर बाद में देखा ये बहुत दृढ़ है कृष्ण की सेवा के लिए, बहुत दृढ़ता है इस युवती के अंदर, तो उन्होंने उनको दीक्षा दी और कहा कि राधा कुंड में जाकर थोड़ा भक्ति करो। फिर देखा कि ये बहुत कठोर और स्ट्रांग है, शास्त्रों का ज्ञान आदि भी है, सेवा की भावना है, तो उनको कहा, एक आदेश दिया उनके गुरु ने कि तुम क्या करो जगन्नाथपुरी जाओ और जो सार्वभौम भट्टाचार्य का घर जो एक प्रकार से खराब हो रहा है वहां जाकर तुम सेवा करो। तो गंगा माता गोस्वामिनी को ऑर्डर दिया कि आप क्षेत्र संन्यास लो। क्षेत्र संन्यास का मतलब है एक स्थान में, उस सिटी या टाउन को छोड़ के बाहर नहीं जाना है। तो गंगा माता गोस्वामिनी यहाँ आती हैं, जगन्नाथपुरी में निवास करती हैं और इस स्थान का देखभाल करती हैं। यहाँ ही वो कृष्ण कथा आदि करते थे और फिर जयपुर के एक पंडित थे कृष्ण चंद्र कुछ ऐसे नाम था, जिनको भगवान रसिक राय उनके स्वप्न में आते जयपुर में उस व्यक्ति के या ब्राह्मण के, वो कहते कि मुझे आप जगन्नाथपुरी ले चलो, वहां गंगा माता गोस्वामिनी है, उनसे मैं क्या करना चाहता हूँ, सेवा स्वीकार करना चाहता हूँ। यदि हम तत्पर है तो भगवान हमारी ओर आते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी प्रदान करते सेवा की। तो वो लाते हैं और इनको देते, इन्होंने कहा मैं तो वैसे ही अकेली हूं, मैं क्या क्या सेवा कर पाऊंगी उनको, उनकी मैं इनको नहीं स्वीकारूंगी, आप ले जाओ। तो जो पुजारी थे जो ब्राह्मण थे वो उनको तुलसी गार्डन में रखते हैं और फिर भगवान रात्रि में उनको तुलसी गार्डन में रखा था तुलसी के नीचे, तो कहते कि आप क्या करो, मुझे आप ले लो और मेरी सेवा करो। तभी तब से रसिक राय की सेवा होती है और वैष्णवगण आते हैं, रसिक राय का दर्शन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो ये विशेष स्थान है चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के लिए और इस स्थान में बहुत सारी लीलाएं हैं, तो रसिक राय को प्रार्थना करनी चाहिए, कृपा की याचना करनी चाहिए। और जैसे आप जानते हैं यहाँ रेनोवेशन का काम हो रहा है, तो प्रयास होना चाहिए कि जहां भी हम आध्यात्मिक स्थान में जाते हैं तो कुछ ना कुछ डोनेशन हमें देना चाहिए। तो यहाँ भी रेनोवेशन के लिए आप सब लोग, कोई भक्त एक चद्दर लेके आपके पास आ सकता है और आप कुछ डोनेशन डालिए यहाँ की सेवा के लिए, क्योंकि जहां जहां हम जाए हरिश्चंद्र प्रभु है नहीं, तो वहां डोनेशन दे, तो आप थोड़ा